नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। ईरान के वित्त मंत्री मसूद करबासियान ने कहा, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की कोई सीमा नहीं, व्यापार और निवेश को भारत ईरान संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी और दो अन्य को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय की देश भर में विभिन्न स्थानों पर छापामारी जारी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी, 59 सीटों के लिए 292 उम्मीदवार मैदान में। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पटना में दो दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के छठे सम्मेलन का उद्घाटन किया। 36 वर्षीय रोजर फेडरर टेनिस के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बने। और चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत के यूकी भांबरी का सामना ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं आशुतोष जैन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया है कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संचार, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। अब से थोड़ी देर बाद अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इस मौके पर विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्री रूहानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, संपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री रूहानी का आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिलेंगे। श्री रूहानी 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। हैदराबाद में रुकने के बाद कल रात वे नई दिल्ली पहुंचे थे। ईरान के वित्त मंत्री मसूद करबासियान ने कहा है कि व्यापार और निवेश भारत ईरान के विविधतापूर्ण संबंधों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आज नई दिल्ली में एक व्यापारिक समारोह में डॉ करबासियान ने कहा कि भारतीय कंपनियां ईरान में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों की कोई सीमा नहीं है। इस अवसर पर फिक्की और ईरान के उद्योग, खान, कृषि और वाणिज्य मंडल ICCIMA ने व्यापारिक, वाणिज्यिक और निवेश सहयोग बढ़ाकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडे 7 दिन की यात्रा पर आज शाम भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और बेहतर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज पटना में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के छठे सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिन के सम्मेलन में विकास एजेंडे में संसद की भूमिका तथा विधानमंडल और न्यायपालिका विषय पर चर्चा होगी। श्रीमती महाजन ने कहा कि विकास समाज के लिए होता है और यह किसी दल विशेष की उपलब्धि नहीं है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए टिकाऊ विकास पर बल दिया।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसकी बात होती है, डेवलपमेंट होना है, इसको हमने एग्री किया, मगर एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगी, कुछ तो प्रगति कर ही लेते हैं, उस प्रगति को स्थैर्य प्राप्त करा देना, वो टिके रहना, इसके लिए भी प्रयास, उसको टिकाऊ कैसे बना सकते हैं।
श्रीमती महाजन ने विधायिका और कार्यपालिका से अनुरोध किया कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम नागरिकों को सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दें। सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और युगांडा सहित कई देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें विभिन्न देशों की राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं।
यार, आधार में पता बदलवाना है, कहाँ जाऊँ?
अरे पास के बैंक में चला जा।
बैंक में आधार?
हाँ, अब आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा कई बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध है। बैंक शाखाओं की सूची देखने के लिए uidai.gov.in पर जाएं या 1947 पर कॉल करें। और हाँ, आधार में मोबाइल नंबर डालना ना भूलें। इससे आधार ओटीपी के द्वारा आप अपना बैंक खाता या मोबाइल नंबर घर बैठे वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान।
दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने पूर्व उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खरात और नीरव मोदी ग्रुप की फर्मों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेमंत भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच इस घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय आज भी देश भर में छापामारी कर रहा है। कल निदेशालय ने इस मामले के आरोपी नीरव मोदी और उसके साझेदार मेहुल चौकसी को सम्मन जारी किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में बैंक में आंतरिक जांच चल रही है।
पंजाब नेशनल बैंक ने कल 8 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जिसमें महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। बैंक की आंतरिक जांच अभी भी चल रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने इससे पहले 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई को बैंक से नीरव मोदी और एक आभूषण कंपनी के खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिनमें फर्जी लेन देन का आरोप लगाया गया था। लुबना यूसुफ मूसा, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक की नियंत्रण व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षकीय आकलन कर लिया है और इसके आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक का यह बयान मीडिया की इन खबरों के बाद आया है कि रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक को आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की कथित जालसाजी के कारण अन्य बैंकों पर बकाया लगभग 11,400 करोड़ रुपए की समूची राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि उसने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारियों के फर्जीवाड़े और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की नाकामी के कारण जालसाजी का मामला सामने आया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि बालिका शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे परिवार का उत्थान होता है। श्री नायडू आज केरल में कोझिकोड स्थित फारूक महाविद्यालय में एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा देने की सभी संगठनों से अपील की। उपराष्ट्रपति ने लोगों से अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने को भी कहा है। त्रिपुरा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 60 निर्वाचन क्षेत्रों में से 59 में कल वोट डाले जाएंगे। चारीलाम सुरक्षित सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रामेंद्र नारायण देव वर्मा की मृत्यु के कारण अब वहां 12 मार्च को मतदान कराया जाएगा। कुल 292 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीराम तरणी कांति ने मतदाताओं से बिना किसी भय और दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीराम तरणी कांति ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक RK5 नंदा को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे मतदान के दिन संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टर किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे, जबकि 1 हवाई एम्बुलेंस आपातकालीन प्रयोजन के लिए भी तैयार होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान पूर्ण हो जाने के बाद भी राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की कुछ कंपनियां राज्य में रहेगी। निशित जोशी, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
नागालैंड में विधानसभा की उत्तरी अंगामी द्वितीय सीट से निर्विरोध चुने गए नाइफ्यू रियो ने कल लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। वे नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के प्रमुख हैं। इस बीच राज्य में 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी जिलों में प्रचार जोर पकड़ रहा है। विभिन्न पार्टियों के नेता रैलियां कर रहे हैं और घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कई महीने पहले वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। श्री लवली ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके नई दिल्ली आवास पर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय माकन के साथ मुलाकात की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राष्ट्रीय राजधानी के लाल किले में आज शाम 8वें रंगमंच ओलंपिक्स का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि भारत पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें 25,000 से अधिक विदेशी कलाकार हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
तेज आवाज देर तक सुनते रहना आपके सुनने की क्षमता खत्म कर सकता है। आपका कान आपके शरीर का ही हिस्सा है, इसे आराम का मौका दें।
शोर शराबा पहुंचाए नुकसान, इनसे बचें तो सलामत कान।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
दोपहर समाचार में अब सुनिए खेल जगत की खबरें जागृति शर्मा से।
20 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर टेनिस के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के 36 वर्षीय रोजर फेडरर ने नीदरलैंड में रोटरडम ओपन में क्वार्टर फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी रोबिन हास पर 4-6, 6-1, 6-1 से जीत दर्ज कर शीर्ष खिलाड़ी होने का खिताब हासिल किया। इससे पहले यह खिताब राफेल नडाल के पास था। इसके साथ ही फेडरर आंद्रे अगासी से भी आगे निकल गए हैं। अगासी ने 2003 में 33 वर्ष की उम्र में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया था। रोटरडम ओपन में आज सेमीफाइनल में फेडरर का सामना इटली के आंद्रियास सेपी से होगा। उधर चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में आज दूसरी वरीयता प्राप्त भारत के यूकी भांबरी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन से होगा। कल सेमीफाइनल में भांबरी ने कोरिया के डुखी ली को 7-5, 6-2 से हराकर शीर्ष 100 खिलाड़ियों की सूची में अपनी वापसी की संभावना बढ़ा ली है।
अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई ने माना है कि वो फ्लोरिडा के मार्जरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में 17 लोगों की हत्या के आरोपी के बारे में मिली सूचना पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि हत्या के आरोपी निकोलस क्रूज के नजदीकी माने जाने वाले एक व्यक्ति ने घटना से कई सप्ताह पहले ही एजेंसी को फोन कर आगाह किया था कि आरोपी के पास बंदूक है और वो स्कूल में गोलीबारी कर सकता है। एफबीआई ने कहा कि इस सूचना को संभावित खतरे के रूप में लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने इस घटना के बाद एफबीआई की कार्य प्रणाली की समीक्षा के आदेश दिए हैं। इसराइल में तेल अबीब में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर कल प्रदर्शन हुए। भ्रष्टाचार के दो मामलों में रिश्वतखोरी के आरोप में नेतन्याहू पर मुकदमा चलाने की पुलिस की सिफारिश के बाद ये प्रदर्शन हुए हैं। श्री नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने दोनों ही मामलों में कुछ भी गलत नहीं किया है और पुलिस की जांच का कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा। इसराइल के कानून के अनुसार अब अटॉर्नी जनरल ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री पर आरोपों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। मैक्सिको में ओक्साका प्रांत में सेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। वहां के गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि गृह मंत्री और ओक्साका के गवर्नर को ले जा रहा हेलीकॉप्टर भूकंप पीड़ित इलाकों के सर्वेक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से दो लोग मारे गए। गृहमंत्री और गवर्नर को मामूली चोटें आई हैं। मैक्सिको में कल शाम 7.2 तीव्रता के भूकंप से लगभग 5,00,000 घरों और व्यापारिक ठिकानों की बिजली गुल हो गई थी। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में लगी आग में 9 लोगों की जान गई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि आज तड़के किनगुयान शहर में स्थित इस इकाई में आग लगी। पुलिस ने बताया कि उसने घटना की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। 9 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ईरान के वित्त मंत्री मसूद करबासियान ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की कोई सीमा नहीं है। व्यापार और निवेश को भारत ईरान संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी और दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर छापामारी जारी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।